श्लोक क्रम क्रमांक 39 हम पढ़ने जा रहे हैं। यत् सेवया शेष गुहाशय स्वराड् यत् सेवया शेष गुहाशय स्वराड् विप्र प्रियस्तुष्यति काममीश्वर विप्र प्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परेर्विनीते तदेव तद्धर्म परेर्विनीते सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् यत् सेवया शेष गुहाशय स्वराड् विप्र प्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परेरविनीते सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् यत् सेवया शेष गुहाशय स्वराड् विप्र प्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परेरविनीते सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् यत् सेवया शेष गुहाशय स्वराड् विप्र प्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परेर्विनीते सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् यत् सेवया शेष गुहाशय स्वराड् विप्र प्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परेर्विनीते यत् सेवया शेष गुहाशय स्वराड् विप्र प्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परेर्विनीते सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् माताए यत् सेवया शेष गुहाशय स्वराड् विप्र प्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परैर्विनीते सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्। शब्दार्थ इस प्रकार से है, कृपया दोहराइएगा। यत जिसकी सेवया सेवा से अशेष अपार गुहाशय प्रत्येक के हृदय में वास, स्वराट लेकिन फिर भी पूर्णतः स्वतंत्र, विप्रप्रिय ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्यारे, तुष्यति संतुष्ट होता है कामम इच्छाओं का ईश्वर भगवान, ततः उस एव निश्चय ही तद्धर्म परे भगवान के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए विनीते विनम्रता से सर्व आत्मना सभी प्रकार से ब्रह्मकुलम ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशज, निषेव्यताम उनकी सेवा में निरंतर लगे रहकर। अनुवाद और तात्पर्य शिला भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की अनुवाद। सदैव मुक्त रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंश की सेवा करते हैं, क्योंकि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय है और ये उनको प्रिय है। तात्पर्य, कहा जाता है कि भगवान यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि कोई उनके भक्त की सेवा करता है। पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन इसमें तो हमारा हित ही है कि हम श्री भगवान की सभी प्रकार से सेवा करें। परम पुरुष के प्रति ऐसी सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा के द्वारा संभव है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइये छे केबा। अर्थात जब तक वैष्णवों की तथा ब्राह्मणों की सेवा नहीं की जाती तब तक कोई निस्तार नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी कहना है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। गुरु महाराज की इंद्रियों को तुष्ट करके ही श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। ऐसे आचरण का शास्त्रों में उल्लेख तो है ही, आचार्य इसका पालन भी करते हैं। पृथ्वी महाराज ने अपनी प्रजा को भगवान के आदर्श आचरण का अनुसरण करने तथा इस प्रकार ब्राह्मणों एवं वैष्णवों की सेवा में प्रवृत्त होने की सलाह दी। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहम् श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोकों की श्रृंखला चल रही है इस अध्याय में। महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से महाराज पृथु की प्रजा ही नहीं हम सब भी लाभ ले सकते हैं, जिससे हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इस श्लोक में ब्रह्मकुलम विप्र प्रिय ये शब्द उपयोग किए हैं। विप्र का मतलब है ब्राह्मण और ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, तो दोनों ब्राह्मणों के बारे में वर्णन आया है। लेकिन हम शब्दार्थ देखेंगे और अनुवाद देखेंगे तो उसमें शिल प्रभुपाद जी ब्राह्मणों तथा वैष्णवों इस प्रकार से उसका अनुमोदन करते हैं, हमें बताते हैं। वैष्णव शब्द को प्रभुपाद जी ने ऐड कर दिया है। तो कोई बोलेगा, बहुत सारे लोग ऐसे टीका करते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों के ऊपर, खासकर उनकी व्याख्या और अनुवाद के ऊपर, कि प्रभुपाद जी ने जो है वही मतलब नहीं दिया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो है वही दिया है और उसको और सुंदर बना के दिया है, या और इस प्रकार से दिया है कि हमारे लिए जो जरूरी है, जो हमें समझना चाहिए, या जो भगवान का भाव है वो श्रील प्रभुपाद जी हमारे सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि भगवान के भाव को समझना साधारण बात नहीं है। कोई आम व्यक्ति भगवान की भावनाओं को समझ नहीं सकता, जब तक भगवान उसको वो बुद्धि नहीं देते कि वो भगवान की भावना को समझे तब तक वो नहीं समझ सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां भगवान के भाव को समझते हुए ये वैष्णव शब्द हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी छोटी बुद्धि है तो हम समझ नहीं पाते। हमारे वैष्णव आचार्यों ने भी बहुत मेहनत की है वैष्णव संप्रदाय को एक ऑथराइज्ड प्रामाणिक संप्रदाय सिद्ध करने के लिए, क्योंकि शंकराचार्य बहुत उन्होंने प्रचार प्रसार किया है सब जगह पे भारत में, और उस समय वैष्णवों को कम समझा जाता था। वो सोचते थे कि वैष्णव ये भावनिक लोग है, सेंटिमेंटल लोग है, जो नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने स्थापित किया कि कैसे वैष्णव सिद्धांत श्रेष्ठ सिद्धांत है, सबसे ऊंचा सिद्धांत है, और वैष्णव सबसे ऊंचे भक्त है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, इस श्लोक में भी ब्राह्मण्य ही आता है, वैष्णव कहां पे लिखा नहीं है। लेकिन आचार्यों ने हमें सिखाया है कि सबसे टॉप मोस्ट ब्राह्मण कौन है, सबसे ऊंचा ब्राह्मण कौन है, वैष्णव है। वैष्णव सबसे ऊंचा ब्राह्मण होता है, क्योंकि वैष्णव आध्यात्मिक स्तर पे होता है, और ब्राह्मण ज्यादातर कहां तक पहुंचता है, ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, मतलब जिसे ब्राह्मण निर्विशेष ब्रह्म जो है उसका साक्षात्कार हुआ है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन वैष्णव तो उस निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो है उसके अंदर जो दिव्य धाम है, उस दिव्य धाम में जो दिव्य व्यक्ति है भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान, उनको देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ये तो और भी ऊंचा स्थान हो गया वैष्णव का। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें जानबूझकर ये शब्द वैष्णव शब्द यहां पर डालकर हमारी सजावट को और भी गहरा बना रहे हैं, और भी साफ सुथरा बना रहे हैं कि भगवान ब्राह्मणों को ही नहीं लेकिन उससे भी ज्यादा वैष्णवों को पसंद करते हैं या उनसे प्रेम करते हैं। तो क्योंकि शास्त्रों में खासकर कर्मकांड शास्त्रों में देखेंगे तो ब्राह्मणों को बहुत स्थान दिया जाता है, भले ही वो ब्राह्मण सुबह धोती कुर्ता पहनते होंगे और दिन में शर्ट पैंट गॉगल पहन के गाड़ी में घूमते होंगे, लेकिन वो ब्राह्मण है, उनको हमें आदर देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और उनके आशीर्वाद की आशा करनी चाहिए। इस प्रकार से कर्मकांड जो उसको प्राधान्यता देते हैं वो इस प्रकार से प्रचार करते कि ब्राह्मण कितने श्रेष्ठ हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि कलयुग में जो ब्राह्मण होते हैं वो असलियत में असुर योनि से आए हुए लोग हैं, क्योंकि कलयुग पतित युग है। तो यहाँ पे ब्राह्मण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं जन्म से उनकी जाति से, वो असुरों के परिवार से, मतलब पिछले जन्मों में वो असुर थे जो कलयुग में ब्राह्मण बन के आते हैं। तो सोचिए जो इन ब्राह्मणों को फॉलो करते हैं उनकी क्या गति होगी। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इस वैष्णव शब्द को जानबूझकर यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि हमारी समझावट साफ हो जाए, हम समझे कि कैसे वैष्णव बड़े श्रेष्ठ है, महान है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो हमें इन महान भक्तों के संग में, वैष्णवों के संग में हमें रहने की याचना करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए। जैसे महान भक्त बताते हैं, यहाँ पे वंश के बारे में बताया जा रहा है, बिना किसी हिचक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंश की सेवा करनी करते रहना कर कर सेवा करते हैं। तो वंश की सेवा मतलब सिर्फ जो जन्म से किसी वैष्णव परिवार में आते हैं या ब्राह्मण परिवार में आते हैं उनकी सेवा करने का भाव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए अनुवाद में अपने तात्पर्य में वंश के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करते, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं कि कलयुग में जो वंश परंपरा चलती है उस परंपरा में शुद्धता पाई नहीं जाती। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में वंश के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं कर रहे। जो अपने गुणों के माध्यम से ब्राह्मण और वैष्णव है हमें उनकी सेवा करनी है, जो सिर्फ जन्म से नहीं, जन्म कर्म दोनों महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ जन्म को हमें महत्व देना नहीं है, कर्म को भी महत्व देना है, गुणों को भी महत्व देना है। तो जो अपने गुणों के माध्यम से ब्राह्मण और वैष्णव है उनकी हमें सेवा करनी है। और ऐसे महान वैष्णवों की सेवा करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे महान वैष्णव की प्रसाद प्राप्त करने से हमें भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के समान है, भगवान की कृपा प्राप्त करने के समान है। यहां और एक बहुत विशेष शब्द उपयोग किया गया है, यत् सेवया शेष गुहाशय स्वराट। स्वराट मतलब पूर्णतः स्वतंत्र। ये शब्द हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले वाले श्लोक में भी देखते हैं। जन्मादि यस्य यतोन्वयात् इतरस् चार्तेष्व अभिज्ञ स्वराट। स्वराट पूर्णतः स्वतंत्र, बड़ा भगवान का विशेष अरेंजमेंट है कि यहां स्वराट मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। और कल ही भारत का इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त, आज पाकिस्तान में मना रहे इंडिपेंडेंस डे, उनका स्वतंत्रता दिवस, और कल भारत मनाएगा। श्रील प्रभुपाद जी जब इस स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करते थे तो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा करते थे, कहते थे कि रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। सच्ची स्वतंत्रता उसे कहते हैं जब हम हमारी निर्भरता भगवान के ऊपर, हमारी निर्भरता को हम स्वीकार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूं, इसका मतलब मैं स्वतंत्र हो गया। ये असली स्वतंत्रता है, क्योंकि हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मम माया दुरत्तया, ये मम माया भगवान की माया शक्ति है, इन्होंने हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर राज करती है। किस माध्यम से? तीन गुणों के माध्यम से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो हम सब तीनों गुणों में प्रभावित होते हुए, जैसे भगवद गीता में वो सुंदर चित्र दर्शित किया गया है तीन गुणों के बारे में, एक कठपुतली है और ऊपर उंगलियां दिखाई है और रस्सी से कठपुतली के हाथ पैर बांधे हुए हैं। तो जैसे ही उंगली हिलेगी उसके हाथ पैर ऐसे हिलेंगे, मतलब तीन गुण क्या कर रहे हैं, हमें नचा रहे हैं इस भौतिक जगत में। तो जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं वो व्यक्ति कैसे स्वतंत्र हुआ? जो अपनी इच्छा से हाथ नहीं उठा सकता, तीन गुणों की मदद जरूरत है उसे हाथ उठाने के लिए। तो वो व्यक्ति कैसे स्वतंत्र हुआ? तो शिला प्रभुपाद जी ये स्वतंत्रता की व्याख्या हमारे सामने स्पष्ट करके बताते हैं कि असली स्वतंत्रता तब होती है, तब हम होते हैं स्वतंत्र, जब हम भगवान के ऊपर निर्भरता को प्रकट करते हैं। यहां कितने सुंदर सुंदर चित्र देख रहे हैं हम, भगवान की सुंदर लीलाओं का दृश्य है। साक्षात भगवत धाम में जो लीला होती है भगवान की, एक जगह पे पंछी दिखाए हैं वहां पे कृष्ण और अपने ग्वाल बालों के साथ, एक ग्वाल बाल ऐसे हाथ करके दिखा रहे पंछी की तरह, और बलराम जी शायद ऐसे ऊपर ऐसे मुंह किए हैं जैसे मोर ने किया हुआ है। आप उस चित्र को देखेंगे तो समझ में आएगा कितना मुक्त वातावरण है, कितना स्वतंत्र वातावरण है वो। मतलब बिल्कुल किसी भी प्रकार का डर या किसी भी प्रकार का चिंता या एंजाइटी कोई नहीं है। पूरे अंतर मन से, शुद्ध मन से, प्रेम से, एकदम खुले रूप से वो भगवान के साथ लीला में भाग ले रहे हैं। कितना आनंद उन्हें महसूस हो रहा होगा हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इस अवस्था में वो कैसे आए, वो सारे ग्वाल ऐसे अवस्था में कैसे आए? तभी आए जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता को भगवान के हाथ में सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करना चाहते, आप हमारी स्वतंत्रता ले लो, आप जैसे बोलोगे वैसे हम करेंगे, आपकी जो इच्छा होगी उसी प्रकार से हम इच्छा करेंगे। ये रियल इंडिपेंडेंस है, ये सच्ची स्वतंत्रता है, जब हम अपनी स्वतंत्रता को पारतंत्र कर देते हैं, दे देते हैं भगवान को, ये असली स्वतंत्रता है। उस समय व्यक्ति भगवान के साथ नित्य रूप से नित्य लीला में भाग ले सकता है। लेकिन यदि कोई अपनी स्वतंत्रता को बचा के रखना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, उस व्यक्ति को भगवत धाम में स्थान नहीं मिलता, उसे फिर ये भौतिक जगत में ही स्थान मिलता है, क्योंकि यही पे स्वतंत्रता जताई जा सकती है, बताई जा सकती है या जी जा सकती है, व्यक्ति जीवन जी सकता है, स्वतंत्र जीवन। वो भी स्वतंत्र जीवन नहीं है, तीन गुणों के माध्यम से वो भी नियंत्रित है। ये माया है, कितनी बड़ी माया है कि व्यक्ति बंधित है फिर भी सोच रहा है स्वतंत्र है। कितनी बड़ी माया है, कितना हमें मूर्ख बनाती है ये माया। वो राजा की कहानी याद आ रही थी मुझे कि वो उसने अनाउंस किया था अपने राज्य में कि सबसे बड़ा जो मूर्ख है उसे ढूंढ निकालो। लेकिन राजा को ये समझ में नहीं आया कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो राजा है, राजा होते हुए भी मूर्ख है, मतलब सबसे बड़ा हो गया वो। तो उसी प्रकार हम भी बड़े मूर्ख है, लेकिन सोचते नहीं, हम बुद्धिमान है, बड़े चालाक है हम, हमें बहुत बुद्धि है, बहुत नॉलेज है हमें, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये माया शक्ति भगवान की इतनी एक्सपर्ट है, इतनी चतुर है कि हम जैसे चतुरों को भी वो लपेट लेती है, आराम से अपने कब्जे में कर लेती है और कहती है कि नहीं नहीं तुम तो बड़े स्वतंत्र हो, देखो कितने स्वतंत्र हो, जहां चाहो वहां विचरण कर सकते हो, जा सकते हो, देखो जो चीज चाहिए वो ले सकते हो। लेकिन ये सब माया का भुलावा है, माया भुलाती है हमें इस प्रकार से और मूर्ख बनाती है और बांध के रखती है इस भौतिक जगत से। इसीलिए महान शास्त्र, महान भगवान के वैष्णव जो होते हैं वो इसीलिए प्रचार करते हैं ताकि हम जो मूर्ख बने जा रहे हैं हमें बुद्धिमान बनाया जाए। शास्त्रों का ज्ञान देकर भगवान के महान भक्त हमारी आंखें खोल देते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय, ज्ञान का अंजन से हमारा जो अंधापन आया है उसको वो खोल के हमें जागृत करते हैं। हम जो माया की लैप में गोद में जो सोए हुए हैं, सोचते हुए कि ये माँ की गोद है, कितना अच्छा सुकून, कितना अच्छा आराम लगेगा, कितनी अच्छी नींद आएगी, लेकिन वो माया की गोद वो एक विच, मतलब विच को क्या कहेंगे हिंदी में, चुड़ैल, चुड़ैल जैसी है, जो खून पीने वाली चुड़ैल है। तो हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है माया की गोद में, लेकिन बड़े मोह की वजह से, माया की वजह से हम सोचते हैं कि नहीं, मैं बहुत सुरक्षित हूं। नहीं, हम बहुत असुरक्षित है इस भौतिक जगत में, और भगवान समय समय पे दिखाते रहते हैं हमें, अलग अलग इंसिडेंट्स, अलग अलग घटनाएं होती है। हम वैष्णवों के परिवार में भी सुनते रहते हैं, कितने दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, अलग अलग विपदाएं, घटनाएं घट रही है। तो ये सारी चीजें भगवान इसीलिए इस दुनिया में रखते हैं, ताकि हम जागृत हो जाए, जग जाए, समझे कि हमें फंसाया जा रहा है, हमें भुलाया जा रहा है, हमें जागृत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, और समझना चाहिए कि हमारा असली इंटरेस्ट, असली अर्थ कहाँ पे है, स्वार्थ कहाँ पे है, उसके लिए हमें प्रयास में लगे रहना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी स्वतंत्रता को भगवान के हवाले कर दें। लेकिन हमारे सामने तो भगवान है नहीं, उनके सामने तो भगवान है, भगवान जैसे बोलते वैसे करते हैं ग्वाल बाल। हमारे सामने कहाँ है शिक्षा है, कृष्ण बलराम है, राधा श्याम सुंदर है, गौर नीता है, लेकिन वो इस रूप से हमारे सामने प्रकट हुए हैं कि मानो वो कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, एक जगह खड़े रहते हैं बस। वो भी भगवान का एक कृपा का आवेश है, अवतार है, डेटी इनकार्नेशन। भगवान अपने आप को एक निसहाय रूप से हमारे सामने प्रकट कर देते हैं और कहते हैं देखो मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूं। ये भगवान की बड़ी विशेषता है। भगवान हमेशा स्वतंत्र होते हुए भी उनको निर्भर रहना अच्छा लगता है। जब भगवान सुंदर सुंदर ग्वाल लीला कर रहे थे छोटे बच्चों की, तो उस समय एक बार उन्होंने मिट्टी खाई थी, जो ब्रह्मांड घाट है ना वहां पर, तो बलराम जी को बड़ा ये हुआ कि क्यों भगवान कृष्ण मिट्टी खा रहे, तो माता यशोदा को जाके कंप्लेन करते कि माता कान्हा ने मिट्टी खाई है। तो बड़ी चिंतित हो जाती है यशोदा मैया, जाती है और कहती है तुमने मिट्टी खाई है कि, वो कहते नहीं मैंने नहीं खाई मिट्टी। तो कहते ठीक है आप अपना मुंह खोल दो बस पता चल जाएगा। और जब भगवान कृष्ण अपना छोटा सा मुंह खोल देते हैं और जब यशोदा मैया अंदर देखती है, तो भगवान की असीम कृपा से उसे भगवान का मुंह नहीं दिखता बल्कि ब्रह्मांड दिखता है, पूरा ब्रह्मांड जिसमें सूर्य, अनेक अनेक ग्रह, सब कुछ, पूरा विश्व दिखता है। और उस विश्व में वो देखती है कि मैं भगवान कृष्ण के मुंह में भी देख रही हूं। यहां तक भगवान उसको दिव्य दर्शन देते हैं, तो बड़ी अचंभित हो जाती है, सोचती है कि ये क्या हो रहा है मुझे, मैं भ्रमित हो गई हूं, और सोचती है कि ये मेरा बालक नहीं है शायद, ये तो भगवान लग रहे हैं। और जैसे ही माता यशोदा का भाव परिवर्तन होने लगता है, एक माता से एक ईश्वरी भाव कि ये भगवान है और मैं दास हूं, सेवक हूं, ऐसे भाव में जब माता आने लगती है, तो भगवान तुरंत अपना मुंह बंद करते हैं और उस भ्रम से माता यशोदा को निकाल देते हैं। क्योंकि भगवान को यह अच्छा नहीं लगता कि माता यशोदा उनकी सेवक या दास के रूप में उनकी पूजा अर्चना करे, उनको ये अच्छा लगता है कि माता यशोदा उनको माता के रूप में प्रेम करे, उनकी सेवा करे, और भगवान को अच्छा लगता है कि वो माता के ऊपर निर्भर रहे हर चीज के लिए। तो ये भगवान इतना सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं, हालांकि वो स्वयं किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वराट है वो, लेकिन उनको कितना अच्छा लगता है। तो निर्भरता का जो जीवन होता है वो बहुत मीठा होता है, भगवान खुद दिखाते हैं, देखो मैं कितना मीठापन अनुभव कर रहा हूं, कितना आनंद अनुभव कर रहा हूं जब मैं छोटे बच्चे के रूप में इन सब भक्तों के ऊपर निर्भर हूं, वो जैसा कहते हैं वैसा करता हूं मैं। ऑफ कोर्स बहुत बार वो अपना मन का भी करते हैं, तो वो तो ईश्वर है तो करेंगे ही, लेकिन कहने की बात है कि भगवान को बहुत आनंद होता है निर्भर रहते हुए जीवन जीने के लिए, तो हमें क्यों नहीं निर्भर होना चाहिए? जब भगवान इतना आनंद ले रहे निर्भरता में, तो हमें भी आनंद लेना चाहिए उस निर्भरता में। इसीलिए भगवान ने अपने आचार्यों को, अपने भक्तों को आचार्यों के रूप में हमारे सामने भेज दिया है, ताकि इन महान आचार्यों को हम अपना केंद्र बनाए निर्भरता का, उनके ऊपर हम निर्भर रहे, उनके मुंह से जो वचन निकलते हैं उन वचनों को हम सुनकर ग्रहण करें, स्वीकार करें और उस प्रकार से अपना जीवन यापन करें, जीवन जिए। जिस व्यक्ति के जीवन में निर्देशक नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन कभी भी आनंद से भरा नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम भगवान की भक्ति में आते हैं, हम दीक्षा भी ग्रहण करते हैं, लेकिन हम निर्देशक को नहीं लेते अपने जीवन में। निर्देशक बहुत जरूरी है, क्योंकि निर्देशक हमारी स्वतंत्रता को चुरा लेते हैं हमसे, हमें स्वतंत्र रहने नहीं देते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस एहसास को या इस भावना को समझना, जिसके ऊपर मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं, कि हम वैष्णव भक्त बनने के बावजूद भी हम निर्भरता में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि निर्देशक हमसे बहुत दूर होते हैं, या बार बार हमें निर्देश प्राप्त नहीं हो पाते, और इसीलिए हमारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारी राधा रानी एक्सप्रेस है ना, मथुरा वृंदावन, वो कैसे चलती है? धीरे धीरे, और हर जगह जैसे ही हाथ दिखाया जाता है वो रुक जाती है, रास्ते के बीच में भी उसका स्टॉप होता है। ऐसी हमारी भक्ति चलती है, धीमे धीमे धीमे, क्योंकि हम अपनी निर्भरता को बढ़ा नहीं रहे, बस थोड़ी सी निर्भरता दिखाई बस हो गया, हम भक्त हो गए, कपड़े पहन लिए, माला पहन लिया, गले में हरिनाम का जप कर रहे हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान के जो सुंदर सुंदर प्रोग्राम है उसमें भाग ले रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ हमने अपनी निर्भरता को दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षण क्षण में, हर समय पे हम भगवान के ऊपर निर्भर है और भगवान के भक्त के ऊपर निर्भर है, इस भावना के साथ उनके दिए हुए मार्ग पे चलते रहना, वो भावना जो निर्भरता की है उसको अंगीकार करना, ये बहुत जरूरी है। उस भाव को हम भूल जाएंगे, हम हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है और इस डोर से हम बाहर निकल जाते हैं, तो तुरंत हमारे भावनाएं विचार बदल जाते हैं। जैसे ही एक कदम बाहर निकलता है, खुला आसमान के जैसे ही नीचे आ जाते हैं, हमारा विचार बदल जाता है, भाव बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। इतना प्रभाव है इस भौतिक जगत में। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक दो गाड़ियां देखेंगे, पेड़ बंदर देखेंगे, कुछ लोग चलते हुए देखेंगे, तुरंत भाव बदल जाएगा। और जैसे ही प्रसादम के वहां जाएंगे, लाइन देखेंगे, तो तुरंत भाव बदल जाएगा। कैसे तो घुस पाए, अंदर जाने के बाद आइटम देखेंगे, भाव बदल जाएगा। क्या आइटम है आज, अच्छे है तो खुश हो जाएंगे, अच्छा नहीं दिख रहा तो नाराज हो जाएंगे। जो भी, हर समय समय पे भाव बदलता है हमारा। हम अपने आप को जरा सोचेंगे, विचार करेंगे, कैसे मेरे भाव बदलते रहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी निर्भरता का भाव कहाँ पे है, कब कब हम प्रकट करते हैं, कब कब हम उस निर्भरता के भाव में कार्यान्वित होते हैं, कार्य करते हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है कि हम भगवान को निर्भरता दिखाते हैं। सबसे बड़ी माया तो माया शक्ति है कि जब हम जप करते हैं तब भी हम भगवान के हरिनाम के ऊपर निर्भर नहीं रहते, वो निर्भरता का भाव नहीं रहता कि भगवान मैं आपका आश्रय ले रहा हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भाव आता नहीं है निर्भरता का जप करते समय। दिन ब दिन हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, अब पता नहीं हमारा अंत कब है, सब किसी को पता नहीं है हमारा लास्ट डे कब है, लेकिन वो निर्भरता का भाव आता ही नहीं है। हर दिन बैठते हैं माला लेके जप करते हुए हरे कृष्ण, लेकिन मन कहीं उड़ता रहता है, किसी किसी प्रकार की चिंताएं मन में बैठी हुई है, बस उसी को सॉल्व करते बैठते हैं, कितने सारे विचार, वो भगवान का नाम ले रहा हूं मैं, भगवान का नाम सुनना है मुझे और भगवान के ऊपर याचना करनी है, मेरी प्रार्थना है, ये हरि नाम एक प्रार्थना है कि भगवान मुझे कृपया आपकी सेवा में संलग्न कीजिए लगाइए, ऐसे भाव आते ही नहीं है। तो कितना हम भक्ति में आगे बढ़ने का जो मौका हर दिन हमें मिलता है उससे वंचित हो रहे हैं, हमारी स्वयं की मूर्खता की वजह से, हमारे स्वयं की एक केयरलेसनेस की वजह से, हम सचेत नहीं है। जान कर हम कोई भी आध्यात्मिक कार्यों में भाग नहीं ले रहे, सही चेतना के साथ भाग नहीं ले रहे, और इसकी वजह से वो बहुत सुंदर संधि जो मौका दिया है भगवान ने भक्ति में आगे बढ़ने का, उससे हम छूट जाते हैं, समय बीतता जाता है। और फिर कई बार फिर भक्त लोग विचार करते हैं, अरे इतने समय हो गया, कितने साल हो गए मैं भक्ति में आया हूं, लेकिन पता नहीं मेरे अनर्थ वैसे के वैसे लग रहे हैं, उसमें कुछ घटाव नहीं है, कुछ घटे नहीं है मेरे अनर्थ, उसी प्रकार का भौतिक आकर्षण मेरे मन में है, मेरे आंखों में है, मेरे विचारों में है। क्यों? क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति अनासक्त तो होना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग बोलते तो, कि व्यक्ति पूरा इस शरीर से और उसकी शरीर से जुड़े हुए हर कोई चीज से अनासक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखते हम। जिसकी उम्र बढ़ चुकी है क्या वो अनासक्त है? नहीं है, उनके अंदर भी बहुत सारी आसक्तियां हैं। तो जो नौजवान है उनकी क्या कहे, उनके अंदर तो कितनी आसक्तियां होंगी। तो बहुत जरूरी है कि हम सचेत होकर जानकर समझते हुए भक्ति के अंगों में संलग्न हो कि हम निर्भरता बढ़ाए अपनी, ताकि हमें भी मौका मिले भगवान के उस स्वतंत्र जगत में स्वतंत्रता से विचरण करने के लिए। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। एक बहुत सुंदर लीला हम दो मिनट में चर्चा करते हैं और उसके बाद हम प्रवचन को अंत करेंगे। वैसे मेरे पास बहुत कुछ था चर्चा करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं ये अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने लगा, श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ और ही मेरे मन में प्रकट किया, तो मैंने जो क्लास प्रिपेयर की है और जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो दोनों अलग है। मेरी क्लास के जो प्रिपरेशन के पॉइंट्स है उसको मैंने अभी तक छुआ ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी, यहाँ जो कोई व्यक्ति बैठता है उसको उपयोग करते हैं श्रील प्रभुपाद जी हम तक वो संदेश देने के लिए जो संदेश हमारे लिए जरूरी है, जो हमारा मेडिसिन है, उसको उस स्पीकर के माध्यम से, प्रवचनकर्ता के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। तो एक बहुत महान आचार्य है अनंत आचार्य करके, जो श्रील रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो एक बार बहुत सारे शिष्य बैठे थे, तो रामानुजाचार्य ने कहा कि मेरी इच्छा है कि कोई तिरुपति जाकर भगवान की सेवा करे। उस समय तिरुपति में कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान का एक मंदिर था और पूरा जंगल, पहाड़ और जंगल, ना वहां कोई रास्ते थे ना कुछ था, कुछ नहीं था। ये 900 साल पुरानी बात है जब रामानुजाचार्य थे तब, 1000 17 के बाद रामानुजाचार्य ने आविर्भाव लिया है, तो लगभग 900 साल हो गए उसको, 900,000 हो रहे हैं। तो उस समय कुछ नहीं था, तो सारे शिष्य सोचने लगे कौन जाएगा कौन जाएगा, गुरु महाराज बोल रहे जाओ, मतलब वो एक प्रकार से जंगल में भेज रहे जंगल में जाओ जो शहर है वो शहर छोड़ के जंगल में जाके भगवान की सेवा करनी है। तो अनंत आचार्य खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, और वो गए और वहां पे वो भगवान की कितनी सुंदर रूप से सेवा कर रहे थे। उन्होंने जमीन थी उसको अच्छी तरह वो उपजाऊ बना रहे थे, और भगवान के लिए वहां पे खेती कर रहे थे, गार्डन बना रहे थे, फूल और तुलसी उगा रहे थे ताकि भगवान को हर दिन वो हार पहना सके तुलसी का और फूलों का। और समय के अनुसार ऐसी परिस्थिति आई कि उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती हो गई थी, तो फिर भी वो सेवा कर रहे थे और वो बड़ा सा पेट लेके उनकी पत्नी भी मदद करती थी, हालांकि उससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता था लेकिन फिर भी वो मदद करती थी। तो भगवान स्वयं तिरुपति बालाजी स्वयं प्रकट होते हैं उनकी पत्नी की मदद करने के लिए। वो कहते हैं कि माता मुझे भी कुछ सेवा दो, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं आपको सेवा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पति को पता चला कि मैं किसी की मदद ले रही हूं तो मेरे पति मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो एक बार ऐसा अप्रोच किया, फिर दूसरी बार फिर से गए कि कहा नहीं नहीं माता आप मुझे थोड़ी सेवा दो मदद करने के लिए, आप ऐसा करो थोड़े समय तक आप जो मिट्टी उन्होंने दी है उठाने के लिए आपको, वो उठा के थोड़े अंतर पे ले आओ और फिर मुझे दो, ताकि आपके पति आपको ना देखे कि आप मुझे दे रहे हो, और फिर मैं यहां से आगे जाके डाल दूंगा जहां पे डालनी है। तो वैष्णव का हृदय होता है कि बड़ा करुणामय होता है, और वो तो एक वैष्णवी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो सेवा कर रहे थे। तो अनंत आचार्य को आश्चर्य हुआ कि पहले जब मैं देता था तो बहुत समय लगता था वापिस आने के लिए, अभी बड़ी जल्दी आ रही है, ऐसे कैसे हो रहा है तो वो कहते हैं कि आप इतने जल्दी कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वैसे ही मैं सेवा कर रही हूं। तो उनको डाउट आता है कि क्या हो रहा है, तो जब वो ले जाती है तो उनके पीछे पीछे जाते हैं देखने के लिए, और वहां जाने के बाद उनको वो जो आए थे बालाजी एक मन वेश रूप लेके ब्राह्मण का, तो उनको जब देती है तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारी सेवा है भगवान के लिए और इस सेवा को तुम किसी दूसरे को दे रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, और बड़े गुस्सा हो जाते हैं। और वो बालक मतलब वो नौजवान जो रूप में आए थे भगवान, वो बड़े डर जाते हैं और फिर भागने लगते हैं, और अनंत आचार्य वो उनके हाथ में एक चॉपर जैसा होता है वो लेके उसके पीछे भागते हैं उसको मारने के लिए कि क्यों मेरे पत्नी की सेवा ले रहे हो, ऐसे करते हुए डांटने के लिए। और वो भागते हैं तो भागते भागते वो अपने हाथ से उसको फेंकते हैं उनको मारने के लिए, तो बालाजी के यहाँ पे आके लगती है वो चिन पे, तो आप बालाजी का दर्शन लोगे तो यहाँ पे सफेद ऐसे लगाया जाता है, वो औषधि है, वो जो उनको लगने की वजह से जो खून आता है ना उसको ठीक करने के लिए वो सफेद लगाया जाता है बालाजी को यहाँ पे। तो वो तो चले गए मंदिर में भागते हुए। तो कहने की बात है कि उनकी जो शरणागति है उसको देख के भगवान स्वयं आते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, कि कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं थी, वो फूल के पौधे उगा रहे थे तुलसी उगा रहे थे भगवान की सेवा के लिए, ये कोई बहुत बड़ी सेवा है क्या, कोई भी कर सकता है, लेकिन उनका जो शरणागति का भाव है, अपने गुरु ने कहा है कि जंगल में जाके भगवान की सेवा करो, जंगल में आए सात हिल्स है उसके ऊपर वो रह रहे थे, और वहां पे पूरा जंगल ही था, कुछ नहीं था, कोई नहीं रहते थे वहां पे, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए वहां पे आए थे। तो कितनी शरणागति का भाव था उनका अपने गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, आज्ञाओं के प्रति, जिसके वजह से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अपना दर्शन देते हैं, हालांकि उनको समझ में नहीं आता कि वो भगवान आए थे करके, लेकिन भगवान आते हैं। इसी प्रकार हम शरणागति का भाव दिखाएंगे अपने गुरुजनों के प्रति और उनके निर्देशनों को स्वीकार करते हुए अपना जीवन आचरण करेंगे तो भगवान भी हमारे सामने प्रकट होंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बड़े प्रेम करते हैं। और इसीलिए हमें इस शरणागति के भाव को बढ़ाने का प्रयास करना है और जितना हो सके अपने गुरुजनों के आज्ञा के अनुसार ही हम अपना जीवन जिए, ना कि अपने विचार से, अपने प्लानिंग से, अपनी इच्छाओं से, लेकिन अपने गुरु महाराज या गुरुजनों ने जो हमें इच्छाएं दी है या हमें आदेश दिए हैं उसके अनुसार हम जीने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।